تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 35 سے، آیت نمبر 35، یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، قرب، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہے۔ ایک بار پھر ایمان والوں کو ایمان کی نسبت کے ساتھ پکارا گیا کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی زندگی کو ویسا بنا لو جیسا تمہارا رب چاہتا ہے۔ کیا مطالبہ ہے یہاں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا مطالبہ ہی یہاں یہی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ بقرہ سے لے کے یہاں تک کئی بار تقویٰ کی بات آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس دین پہ عمل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا خیال، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے علیم ہونے کا، اس کے بصیر ہونے کا احساس، اپنی اوقات کو پہچاننے کا نام اور اپنی شان کو جاننے کا نام۔ میں کیا ہوں؟ میں کس کی مٹھی میں ہوں؟ میری پیشانی کے بال کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کون ہے کہ جس کے بغیر میں جی نہیں سکتی؟ ان ساری چیزوں کا فہم معلوم ہو جائے۔ پچھلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکے اور محاربے کی باتیں تھیں، ان سے اگلی آیتوں میں چوری کی آیتیں آ رہی ہیں، چور کی سزا، اور بیچ میں اخلاقیات کا ایک خوبصورت درس، یا ایوہ الذین آمنو اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ ہے قرآن پاک کا خوبصورت انداز تعلیم۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہم سورۃ المائدہ کے قانونی حصے کو پڑھ رہے ہیں کہ جس میں قانون، لا کی تعلیم دی گئی، لیکن صرف سزائیں نہیں دی گئیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ ریمیڈیز دی گئیں کہ جن پہ عمل کر کے انسان ان جرائم سے بچ سکتا ہے۔ کبھی بھی کوئی قانون پروف نہیں ہو سکتا یا اس پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے قبولیت نہ ہو۔ آج کے دور میں عموماً جب لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو بہت خشک طریقے سے، رسمی انداز سے ڈوز اور ڈونٹس میں بات کر دی جاتی ہے، یہ حق باتیں ہیں، وہ ہیں، لیکن قبولیت کی بات نہیں کی جاتی، یا سزا کا، سزائیں تو سنائی جاتی ہیں، ان سے ڈرایا تو جاتا ہے، لیکن دنیا کی سزاؤں تک روک لیا جاتا ہے، آخرت کی فکر نہیں لگائی جاتی کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو دنیا میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس کے برعکس اسلام نے جذبات کو شامل کیا، دل کی تطہیر اور دل کی پاکی کا خیال کروایا کہ دیکھو اگر تم نے اسلام کے پہلے حکم پہ عمل کر لیا تو پھر دوسرے کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا پہلی چیز اللہ کا تقویٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی ضرورت کو اپنی زندگی میں محسوس کرو، اور کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب تلاش کرو۔ یہ دوسرا مطالبہ ہے ایمان والوں سے، اور وہ کیا؟ کہ تم اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کا قرب حاصل کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ کیا ہے، اور اس پوری آیت کی مین چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ ہم پہلے لفظ وسیلہ کو دیکھتے ہیں اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ इसकी क्या प्रैक्टिकल फॉर्म्स हैं? सिंपल मानी किया जाए तो वबतगू, इब्तगा क्या होता है? बगा से, तलाश में जाना, मुबालगे की हद तक किसी चीज़ को लेना। तलब, तड़प, अर्ज, जिसको कहते हैं ना एक इंसान की का मुंतहाए नज़र आप ये कह लें। वबतगू इलैहिल वसीला, एक ईमान वाले को उसकी मंजिल दिखाई जा रही है, और वो क्या है? सारी इबादात का खुलासा, सारी तालीमात का खुलासा, सारे दीन को सीखने, सिखाने, कहने, सुनने का खुलासा, हज के एक एक रिचुअल को अदा करने का खुलासा, सारा दिन भूखे रहने और रातों को क्याम करने का खुलासा क्या है? कि वब्तगु इलैहिल वसीला, कि तुम अल्लाह का कुर्ब पा लो। लफ्ज़ वसीला अरबी ज़ुबान में क़ुर्ब के मानों में आता है। वाव, सीन, लाम इसका रूट है। वसल, वसल का माना होता है मोहब्बत के साथ क़ुर्ब तलाश करना। तो वसीला क्या हुई? जोड़ने वाली चीज़, वो चीज़ जिससे मकसूद हासिल करने के लिए तवस्सुल किया जाए। क़ुर्ब का ज़रिया, तरीक़ा, मीडियम ऑफ क़ुर्ब आप कह लें। उर्दू में भी ये लफ्ज़ आता है वसल से, शायरी में तो बहुत ही बोलते हैं ना वसल। वसला स्वाद से हो तो इसका मानी क्या होता है? मुतलकन मिलना, ओनली मिलना, दो चीज़ें मिल गई, आपने पानी को दूध के साथ मिला दिया तो वसल हो गया। इसी से फिर हमारे यहाँ उर्दू का लफ्ज़ विसाल भी है, फलां विसाल पा गए, फलां का विसाल हो गया, चले गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा बड़ा लतीफ़ सा फ़र्क नोट कीजिएगा कि जब वाव स्वाद लाम के साथ होता है तो सिर्फ मिलने के मानों में होता है, लेकिन जब वाव सीन के माने में होता है तो मोहब्बत के साथ मिलना, क़ुर्ब के साथ मिलना। और यहाँ वाव सीन लामी है, तो मतलब क्या है? अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत के साथ क़ुर्ब हासिल करो। हमारे यहाँ इस लफ्ज़ की कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुई, और उसकी वजह क्या है कि अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ वसीला जिन मानों में है उर्दू में भी उसी पे सोचा गया। हालांकि हकीकत क्या है कि अरबी और उर्दू के लफ्ज़ वसीला के मानों में बहुत फ़र्क होता है। इसी से हमारे कुछ साथियों को शुबा हुआ और उन्होंने इसको किसी और एंगल से देखा। असल में यहाँ दावत है बंदे को कि रब का क़ुर्ब तलाश करो, ऐसे काम करो कि तुम रब से जुड़ जाओ। अब देखिए कि इंसान इस ज़मीन पे आया, पहले जन्नतों में बसाया गया, अब ज़मीन पे आ गया, क्यों? कि अब वहाँ जाके रब का क़ुर्ब पाओ, रब की तलाश करो, रब को पाने के तरीके। अल्लाह ताला अपने वजूद के साथ तो आसमानों पे है, लेकिन तुम ज़मीन पे रह के ऐसे आला काम करो, तुम्हारे ऐसे अज़ाइम हो, तुम्हारे ऐसे बुलंद मकसद हो कि तुम वो काम करके अरशों वाले रब का क़ुर्ब पा लो। याद रखिए, यहाँ क़ुर्बत से मुराद जिस्मानी क़ुर्बत नहीं, वरना तो एक और ही सोच निकल जाएगी, फिर एक और ही तरीका होगा। अगर आप पूछेंगे तो बाद में उसका बता दूँगी आपको कि वो क्या होता है, लेकिन आयत की इब्तिदा में मैं वो बात नहीं करना चाहती। तो यहाँ रग़बत दिलाई गई, जान जिसने दी तुम उसके रास्ते में दे दो, वक्त जिसने दिया वक्त उसको दे दो, माल जिसने दिया उसके रास्ते में लगा दो, औलाद जिसने दी उस औलाद को लगा दो, दुनिया की हर नेमत दे दो, लेकिन खुदारा अपने रब का क़ुर्ब पालो। और बंदे को रब का क़ुर्ब पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, बातें नहीं, काम। अल्लाह की क़ुर्बत का गहरा एहसास, फ़ैनी करीब, उसने तो कह दिया मैं तो करीब हूँ, यहाँ हुक्म दिया अब तुम भी करीब आ जाओ। देखी गई है ये चीज़ कि कोई चीज़ कितनी ही करीब क्यों ना हो, आप कि बिल्कुल हाथ बढ़ाने की बात हो फिर भी पकड़ सकते हैं उसको, लेकिन पकड़ता कोई कब है? जब वो भी तो कोशिश करे। बस आप देखिए कि दरख्तों पे फल लगता है ना, एक तो दरख्त होते हैं बहुत ऊंचे, डालियाँ ऊंची ऊंची हैं, आपका हाथ ही नहीं जाता, लेकिन कभी कभी बिल्कुल नीचे झुकी पड़ी होती हैं डालियाँ। उसमें क्या होता है? बहुत करीब है, लेकिन हाथ तो फिर आपको ही उठाना पड़ेगा। हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ में आ जाएगा। यही बात है कि अल्लाह सुबहाना ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर तकवा आ गया, तुम्हारे ईमान की चौकीदारी हो जाएगी, तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा, कोई चोर अंदर नहीं आएगा। और जितना तकवा बढ़ता जाएगा, अल्लाह मुझे देख रहा है, कान नकत और आहू की कैफियत महसूस होगी, उतना ही तुम रब का कुर्ब पाने की कोशिश करोगे। और फिर इंसान एक वक्त आता है कि ऐसे काम करने लगता है कि उसकी ज़िंदगी का मिशन ही ये बन जाता है। आप देखें कि दुनिया में अमूमन बहुत सारे लोगों की कुर्बत चाहिए होती है, कोशिशें भी की जाती हैं। बचपन से छोटा बच्चा माँ बाप के करीब रहना चाहता है, माँ ज़रा छोड़ के जाती है ना तो बच्चा रोने लगता है। कोई सल्लाह के बंदे को पूछे, तुम्हें क्या हुआ? दूसरे ने तो तुम्हें और भी मोहब्बत से उठाया, वो तो और मुख्तात है कि ये मेरा बच्चा नहीं, किसी और का बच्चा है, मैं इसको सख्त हाथ न लगाऊं। लेकिन देखिए, ज़रा माँ की गोद से बच्चे को हटाएं तो बच्चा चूँ 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 शुरू हो जाता है, छोटा सा बच्चा। और फिर माँ बड़ी अदा से, बड़े लाड से, प्यार से कहती है, इसको बड़ी पहचान हो गई है, इसको मेरा पता चल गया है। कुर्बान जाए उस ज़ात पे कि जो एक छोटे से बच्चे को माँ की कुर्ब की बात तो सिखा दे, उसको तो माँ की पहचान हो जाए। लेकिन एक बंदा जूं ही बढ़ता जाए, जितना उसका कद बढ़ता जाए, जितनी उसकी अकल बढ़ती जाए, जितना उसका शऊर बढ़ता जाए, जितनी अल्लाह की नेमत उस पर बढ़ती जाए, उतना ही वो अपने रब की पहचान छोड़ दे। खुतिला लिंसानु मा अकफरा मिन अय्यि शयइन खलका। अल्लाह कहते हैं ये इंसान तो मारा जाए, ये तो मार दिए जाने के लायक है। यानी एक प्यार का अंदाज़ है, कुछ स्पेशल सही मारने वाली बात नहीं है। यानी इस इंसान को क्या हो गया है, कैसे कुफर करता है? एक चीज़, एक वक्त था इंसान दुनिया में आने के लिए अल्लाह का मोहताज था, फिर कदम नहीं उठा सकता था, बैठ नहीं सकता था, लेटा ही रहता था, खा नहीं सकता था, नाक पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता था, और देखो सर अब बड़ा हुआ तो कैसे कुफर कर रहा है, कैसे कहते कि मुझे रब की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हम सबको उस जन्नत में जाने से पहले इस दुनिया को जन्नत बनाने का नुस्खा बता दिया। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। वो जन्नत भी जन्नत इसीलिए है कि वो रब के करीब की जगह है। और अब इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ए अल्लाह मेरे लिए अपने करीब ही जन्नत में घर बना दे। ये दुनिया कब जन्नत बनती है? जिसे दुनिया में रब की कुर्बत मिल गई, रब की मार्फत मिल गई, फिर उसकी ज़िंदगी खूबसूरत ज़िंदगी होने लगती है, फिर तन्हाई तन्हाई नहीं लगती, उदासी नाम की कोई चीज़ उसकी ज़िंदगी में नहीं रहती, गम गम नहीं, दुख दुख नहीं, अंधेरे में भी डर नहीं लगता, उसके अंदर एक ठंडक, एक खुशी, उसका दिल लड्डू फूटता है। और फिर ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो ला खौफ और ला हुज़न हो जाता है, ना खौफ रहता है किस बात का, मुस्तकबिल में क्या होगा, और ना माजी का गम रहता है कि क्या हुआ था, पिछली ज़िंदगियों में नहीं जीता, आगे चलता है, आगे जाता है। जब इतने फ़ायदे हम सुनते हैं इस बात के कि अल्लाह का कुर्ब मिले, तो एकदम सवाल पैदा होता है कैसे, क्योंकि इंसान की तड़प है ना, फितरत है। कोई आपको रग़बत दिलाता है ना, फलां चीज़ बड़ी अच्छी है, फलां बहुत अच्छा काम है, तो आप फ़ौरन उसके बाद पूछते, अच्छा कैसे, क्या करूं, फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, कितने की है, कहां से मिलेगी, अच्छा वो चीज़ कहां है, कहां हो रहा है ये काम, मैं भी जाऊं, फ़ौरन पूछते हैं ना। तो यहाँ इंसान की इसी तबीयत का ख्याल रखते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कैसे, वजाहिदू फी सबीलिही, और मेहनत करो उसके रास्ते में, जिहाद करो उसके रास्ते में। क्यों करें? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। फलाह पाना क्या है यहाँ असल में? कि तुम्हें रब का कुर्ब मिल जाए, तुम अल्लाह ताला के कुर्ब को पालो, तुम अल्लाह ताला के करीब हो जाओ। तो गोया के एक एजेंडा दे दिया, امت مسلمہ کو، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اللہ کی نگاہوں میں بڑا بننا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ محنت، جاہدو فی سبیلہ، محنت کرو، ایک مشنری زندگی گزارو. اور جہاد آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے دین کے دفاع کی کوششیں، یہ قتال کے ذریعے سے ہوتا ہے جب دشمنوں کے خلاف تلواریں اٹھتی ہیں، اور یہ اخلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے جب مسلمان کہیں حاکم بن جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اور یہ معاملات کے ذریعے سے ہوتا ہے جب مسلمان اپنے ارد گرد رہنے والوں سے اچھے معاملے کرتا ہے تاکہ اس کے اس عمل کو دیکھ کے اس کے ساتھ بیٹھنے والے اسلام کی طرف مائل ہوں، اور یہ قلم کے ذریعے سے ہوتا ہے جب کچھ خوش قسمت لوگ اللہ کے دین کے اس سورس کو بچانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں، کتاب اور سنت کے اس خزانے کو اپنی نوٹ بکس میں چھپا کے اپنے دلوں کے اندر بند کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس علم کی حفاظت کرنی ہے، اس ورثے کی حفاظت کرنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا. کتنا آسان ہے، کوئی مشکل ہے اس راستے میں؟ کچھ بھی تو مشکل نہیں. اب دیکھیے کہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی قربت ہے. اب چیک کریں اپنے دل کو، ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے اتار دیں، لائٹ مائنڈڈ ہو کے، کوئی کام نہیں، کوئی کسی کا پریشر نہیں، کوئی بچوں کی بات نہیں، کوئی سسرال کے جھگڑے نہیں، سارے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو الگ کریں، پانی کے بل نہیں، بجلی کے بل نہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں اتنا الجھتے ہیں کہ ہمیں اصل مقصد ہی بھول جاتا ہے. آپ نے کئی دفعہ یہ نوٹ کیا ہوگا، آپ بڑے اہم کام کے لیے کمرے میں جاتے ہیں کچھ لینے، اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں یا تو کوئی ڈسٹریکٹنگ چیز پڑی ہوتی ہے، یا دو بچے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی صلاح کرانے لگتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو کافی عرصے کے بعد آتے ہیں، اوہو میں کیا کرنے آئی تھی، دیکھو کھانا تو جل گیا ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بڑا مسئلہ جو تھا وہ بھول جاتا ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، بڑی طلب کی چیز بھول جاتی ہے چھوٹی چیز کو لینے میں. بعض دفعہ آپ کو بڑی اچھی چیز لینے جاتے ہیں، وہ ایک ہی ہوتی ہے وہاں، آپ فٹافٹ پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ پہنچیں راستے میں آپ کو کوئی ریک پہ رکھی ہوئی چھوٹی سی چیز کو ڈالر دو ڈالر کی دکھتی ہے، سیل کا سائن دکھ جاتا ہے، بائی ون گیٹ ون فری دکھتا ہے، آپ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنی دیر میں کوئی دوسرا جا کے اس ریک سے وہ آخری چیز اٹھا لیتا ہے، پھر آپ کہتے ہو اوہو میں نے کیا کیا، دیکھو کیا لینے آئی تھی، کیا لیا، افسوس، حسرت، حالانکہ کیا ہے، ابھی نہیں تو کل پھر کوئی آ جائے گی اور سیل پہ. لیکن دنیا کی سب سے قیمتی چیز اللہ کی قربت، یہ قربت اپنی اصل شکل میں، کامل صورت میں، محسوس کرنے کی کیفیت کی صورت میں آخرت میں ملے گی. اور صحیح روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کے بہت قریب ہوگا، ان کو اپنا دیدار کروائے گا، ان سے ملاقات ہوگی، باتیں ہوں گی، جس کی تفصیلات کا یہاں ذکر نہیں، اشارہ ہی کافی ہے، وہاں حقیقت میں جسمانی قربت ہوگی، آمنے سامنے بیٹھیں گے، اللہ کی ملاقات ہوگی. لیکن اس دنیا میں اس کو پانا ہے تو اعمال کے ذریعے پانا ہوگا، کسی بندے کا عمل ہے جو اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے، ایک کتنا لطیف سا احساس اس کو ہونے لگتا ہے، اس کو اس کام کا تجربہ ہونے لگتا ہے دنیا میں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی کام آپ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، اونلی فار اللہ تعالیٰ، فار گاڈ سیک، فار اللہ سیک، پھر اس کو دنیا میں وہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعی اسی طرح کل قیامت کے دن بھی میں اللہ تعالیٰ کو پاؤں گی، اور میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام صرف آپ کے لیے کیا تھا. اور اس میں بعض دفعہ انسان کو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو آپ کی ذات کے بت کو توڑ کے رکھ دیں، چور چور کر دیں، پیس کے رکھنا پڑتا ہے اپنی شخصیت کو، آپ کو اپنے آپ کو پورا میرینیٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں کیا ہوں، چھوڑو مجھے تو اپنے رب کا قرب پانا ہے، مجھے تو اپنے رب کی رضا چاہیے. اور یہاں اس کے دو راستے، تقویٰ اور جہاد، ڈرنا اور جدوجہد کی سطح پر اللہ کا پرستار بننا. انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حق اور ناحق کے درمیان کھڑا ہوا پاتا ہے، हक की तरफ बढ़ने में इसकी अना टूटती है, इसकी दुनियावी मसलियतों का ढांचा बिखरता हुआ दिखता है, जबकि गैर हक या ना हक का तरीका इख्तियार करने में इसकी अना कायम रहती है, इसकी मसलियतें पूरी तरह महफूज दिखाई देती हैं। ऐसे वक्त में फिर जो बंदा अल्लाह से डरे और सारी बातों को पीछे डाल के अपने रब का दामन पकड़ ले, हर मुश्किल हर नाखुशगवारी को झेल कर अल्लाह की तरफ बढ़े, तो यही है वो चीज़ जो बंदे को रब का कुर्ब देती है। इसका नक़्त तजुर्बा इंसान को उन लतीफ़ एहसासात की सूरत में इस दुनिया में होने लगता है जो अल्लाह से मोहब्बत वालों के दिल के अंदर एक ठंडक की सूरत में होती हैं। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो तकवा और जिहाद का दामन छोड़ दें, इस रास्ते पे चलने को तैयार ना हो, तो गोया कि फिर उस वक्त वो अल्लाह का इनकार करते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने अगली आयतों में कहा, इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लव अन्न लहुम मा फिल अर्दि जमीया, अगर वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है सारे का सारा, सिर्फ इतना ही नहीं, वह मिसलहू माहू, और इसके साथ इतना ही और, यानी जितना इस दुनिया में है इतना ही और हो, यानी ये दुनिया दुगनी हो जाए, फिर क्या होगा, लियफ्तदू बिही मिन अज़ाब यौमिल क़ियामा, ताकि वो फ़िदिये में दे दें क़ियामत के दिन के अज़ाब के बदले में, रनसम, रनसम बोलते हैं गालिबन उसको, कि ये ले लो और मुझे छोड़ दो, ये लो और ये छोड़ दो, क्या होगा, मा तुक़ब्बिल मिनहुम, हरगिज़ नहीं उनसे कबूल किया जाएगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अज़ाब में उनके दिल की कैफियत क्या होगी, उसका जिक्र अगली आयत में किया, युरीदूना यखरुजू मिनन्नार, वो इरादा करेंगे कि वो आग में से निकल जाएं, लेकिन वमा हुम बिखारिजीन मिन्हा, हालांकि वो नहीं है उससे निकलने वाले, हा की ज़मीर नार की तरफ है, इसीलिए मुअन्नस है, फीमेल है, और क्या है, वलहुम अज़ाबुम मुकीम, और उनके लिए कायम रहने वाला अज़ाब है। ये दो किरदार पेश किए गए, पहली आयत में ईमान वालों को अल्लाह से डरने और जिहाद की रग़बत देके अल्लाह का कुर्ब पाने की दावत दी, दूसरी आयत में बुनियादी तौर पर इसी कुर्ब से दूरी रखने वालों का अंजाम बताया गया। जब आपने अपेरेंटली इन दो आयतों को देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ मौजू की आयात हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि आपको इनका रब मिला होगा कि वो लोग कैसे दुनिया में जीते हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं, और वो लोग जो अल्लाह के हुक्मों का इनकार करते हैं, अल्लाह की कुर्बत का इनकार करते हैं। कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा इनको, ये तो मैंने दोनों आयतों का रब्त मिलाया। अब चलते हैं लफ्ज़ वसीला पे मज़ीद थोड़ी सी बात करने के लिए, इसलिए कि इसकी बहुत ही ख़ूबसूरत तफसीलात हमें मिलती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की रोशनी में। मैं बात शुरू करूंगी इस मौजू पे, अलामा आलूसी हैं, बहुत मारूफ़ एक आलिम गुज़रे हैं, और तफसीर रूहुल मानी, ये अरबी की तफसीर है। इनमें इनका एक कॉल है जो इन्होंने वसीला के लिए, यानी इस लफ्ज़ की डिस्क्रिप्शन की है, तो इंशाल्लाह मैं वो सामने रखूँगी, फिर इसको हम मुख्तलिफ तरीके से देख लेते हैं, और बाकी मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें इसी में आएंगी। जी, हवाला नोट कर सकते हैं आप लोग, अलामा आलूसी हैं और तफसीर का नाम है तफसीरुल मानी, उर्दू में अवेलेबल नहीं है, अरबिक में है, आप ख़ुद भी देखना चाहें तो उसमें ये देख सकते हैं। कहते हैं कि वसीले की तीन अकसाम हैं, वसीला तीन किस्मों का होता है, कौन कौन सा, नंबर एक, पहली किस्म है वसीला बमानी तवस्सुल, वसीला बमानी तवस्सुल, उर्दू में तवस्सुल लिख रहे हैं तो ता वाओ सीन लाम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप वाओ पे ज़बर डाल के सीन पे शद और ज़बर ज़रूर डालें, वरना हो सकता है कि बाद में जब आप कुछ अरसे के बाद अपना ही लिखा हुआ पढ़ें तो आप इसको तोसल पढ़ दें या तूसल पढ़ दें। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। वसीला बमानी तवसल, ये क्या है? तकर्रुब बितवाती वल इबादात, अरबी लफ्ज़ मैंने जान के बोले ताकि आप थोड़ा सा भी इसको भी समझने की और इसको सुनने की आदत डालिए। तकर्रुब कुर्ब पाना, अल्लाह का कुर्ब तलब करना, कैसे? बितवाती इतात के ज़रिए, इतात फरमाबरदारी सबमिशन जिसको आप कहते हैं, वल इबादात और इबादात के ज़रिए, ठीक है? इसको कुछ और लफ्ज़ों में भी कहा जाता है, वो भी बोल देती हैं अरबी में, शायद किसी को फ़ायदा दे दें। अलवसीलता क्या होता है? एक और अरबिक तफसीर है, उसमें से एक कोटेशन आपको लिखा रही हूँ। अज़ुल्फ़ा बिफ़िल तौआती व तर्किल मासी, एक एक लफ्ज़ को देख लेते हैं। वसीला क्या है? ज़ुल्फ़ा, ज़ुल्फ़ा क़ुर्बत को कहते हैं, करीब पाना, कुर्बत पाना। ज़ुल्फ़ा करीब होना, बिफ़िल तौआती इताअत के फ़ेल के ज़रिए, व तर्किल मासी और गुनाहों को छोड़ने के ज़रिए। ये आता है वसीला बमानी तवस्सुल। इसमें क्या आता है? यानी इंसान अल्लाह का कुर्ब पा सकता है तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए, इबादात के ज़रिए, बातों को मान के, अल्लाह ताला का ज़िक्र करके, उससे दुआएं मांग के, सदका खैरात करना, यानी हर नेकी बंदे को रब का कुर्ब देती है। और एक रिवायत में तो ख़ास तौर पे नमाज के लिए ये लफ्ज़ भी आते हैं कि अस्सलातु क़ुरबानियतु लिकुल्ली मोमिन, नमाज ईमान वाले के अल्लाह से कुर्ब का ज़रिया है, ठीक है? तो वसीला के जो तीन मानी हैं, पहला मानी क्या हमने देखा? वसीला बमानी तवस्सुल, मुख्तसरा नोट कर लें, फिर तीनों को इकट्ठा हम देख सकते हैं। इस मानी पे सब उलमा का इत्तेफाक है, कोई शक नहीं करता इस पे कि ये सही है कि नहीं। सब कहते हैं कि हकीकत है, इंसान जितना अल्लाह ताला की इबादत करता है उतनी ही उसको उससे ठंडक मिलती है और वो करीब हो जाता है अल्लाह ताला के। अपनी और आम दुनिया में भी देखिए, जो आपकी बात मानता है वो आपके करीब हो जाता है ना, तो फिर इंसान अल्लाह की बात माने या अल्लाह की इताअत करे या अल्लाह ताला के लिए इबादत करे, उसके हुक्मों को पूरा करे, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला फिर उससे राज़ी ना हो और उसको अपने करीब ना करे। ये तो थी पहली किस्म। दूसरी किस्म लिखते हैं तवस्सुल बिल मखलूक, तवस्सुल बिल मखलूक, यानी वसीले की दूसरी किस्म क्या है? कल वसीलतु क्या है? तवस्सुल बिल मखलूक। तवस्सुल वही लफ्ज़ है जो ऊपर गुज़रा, करीब होना, बिल मखलूक मखलूक के ज़रिए से, मखलूक को किसी को अंदर डाल दिया जाए ताकि बंदा रब के करीब हो। इसमें क्या कुछ आता है? मसलन मुसलमानों से दुआ की दरख्वास्त करना कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, और शरण इसमें कोई कबाहत नहीं है कि एक शख्स ज़िंदा है, होश में है, समझदार है, और आप उससे कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। हर एक से कर सकता है इंसान, ख़ास तौर पे जो लोग दीनदार हैं आपकी निगाहों में, नमाजी हैं, हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, जिहाद के लिए निकले, इल्म के रास्ते पे हैं, आप इनसे दुआ कर सकते हैं। और जिससे दुआ की दरख्वास्त की जाए उसे कबूल भी करना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि किसी को दुआ के लिए कहा जाता है तो अगला आगे से कहता है, नहीं 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 मैं कैसे करूँ, मेरी कैसे मानी जाएगी। नहीं, आपको किसी ने कहा, नकद ही दे दें, आप रखें ही ना सर पे, फ़ौरन कह दें अल्लाह ताला आप पे रहमत करे, अच्छा मैं आपको अभी देती हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाद में भी कहूँगी, ठीक है? फिर इसमें आप देखिए कि बड़ा छोटे को भी दुआ के लिए कह सकता है, नेक बद को भी कह सकता है, इवन जिसको आप बुरा समझते हैं उसको भी कह सकते हैं। कोई नहीं जानता कि अल्लाह ने किसकी सुननी है, और किसी का इसमें फिर एक थोड़ी सी ज्यादती हम लोग ये कर देते हैं कि ये सोच लेते हैं कि दीनदारों से कराई तो बस कबूल हो के ही रहेगी, मौलवी साहब ने कर दी तो पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, किसी से ये वादा नहीं है कि तुम्हारी ज़रूर सुनूंगा। उसकी ज़ात है वो जिसकी भी सुने ना सुने, उसने नबियों की भी नहीं सुनी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटा मांगते रहे, नहीं मिला, जब अल्लाह ने चाहा होगा तभी मिला होगा। ये उसकी शान है, कोई नहीं कह सकता कि नेक की कबूल है और बद की नहीं। बाज़ दफ़ा बद की अल्लाह जल्दी कबूल करता है, एक आजमाइश होती है कि देखो इसकी सुनी है फिर भी ये मेरी तरफ़ आता है कि नहीं आता। तो ये गैब के मामले हैं, लेकिन हमारा काम क्या है मुख्तसरन कि हम दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये गुमान नहीं कर सकते कि इसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये छोटा सा फ़र्क नोट कीजिएगा, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बातों में से एक बनी इसराइली रिवायत थी, तो मैं सुन रही थी, तो उसमें था कि एक दफ़ा एक शख्स था, तो उसने कोई ऐसा गुनाह किया, तो कहा गया कि इसको वो शख्स पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह ना किया हो। तो कोई भी नहीं आगे बढ़ा, कोई है ऐसा जो ये कहे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया? जो ये कहता है ना मैंने कोई गुनाह नहीं किया या मेरे अंदर कोई कमी नहीं, वो मेरा ख्याल है कि सबसे झूठा शख्स है दुनिया का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख़ुद इसकी रिवायत कायम की। आप नबी थे, आपको किसकी दुआओं की ज़रूरत थी? आप जो मांगते अल्लाह ताला दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, जब वो उम्रे के लिए जा रहे थे या हज के लिए, तो आपने फ़रमाया फ़ला तनसाना या अखी मिन दुआइक, बस हमें ना भूलना ए मेरे भाई अपनी दुआओं में। कितना प्यारा अंदाज़ है मोहब्बत। इसी तरह उवैस करनी के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम को ज़िंदगी में नहीं देख सके, मिले नहीं, लेकिन आपने उनके बारे में फरमाया कि मेरे बाद उवैस करनी आएंगे, जब वो आएँ तो उनसे दुआ की दरख्वास्त करना। अब ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो पल्ले से बांध ली, टो में लगे रहते ढूंढते कि कब उवैस करनी आएंगे। पता चला कि यमन से करन कबीले का एक काफ़िला आया है। अब ढूंढते हुए इतने लोगों में, लाखों के मजमे में कोई दिखता थोड़ी है, ढूंढते ढूंढते एक शख्स उवैस को देखा और अल्लाह के नबी सल्लम की बताई हुई निशानी जो थी उससे पहचान लिया। इनकी गालिबन कलाई में कोई निशान था, उससे पहचाना। फिर उन्हें कहा कि मेरे लिए दुआ करो, तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के नबी के सहाबी, मैं आपके लिए दुआ करूं? कहा ये मेरा हुक्म नहीं है, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है, उन्होंने कहा था कि वह ऐसे दुआ कराना। तो मिलती है ये बात, हमें नहीं पता आज ये जो टूटी फूटी इबादत की हमें तौफीक मिल रही है ना, ये किसी की दुआ लगी होगी। हो सकता है अगर हम लोगों की दुआ ना लेते तो आज यहाँ बैठने की बजाय कहीं और बैठे होते। ये दुआएं रंग लाती हैं, दीन की महफिलों में इंसान दुआओं से बैठता है, और गुनाह की महफिलों में इंसान बाज़ दफ़ा माओं की बद दुआओं से बैठता है, जैसे जुरैज के साथ एक वाक़या हुआ। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें इंसान को मिल जाती हैं। अब यहाँ तो ये बात काफ़ी हो गई कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाए मखलूक के ज़रिए। इसी का एक और अमली इजहार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक फ़ेल से मिलता है। इनके दौर में कहत हुआ, तो इन्होंने उस मौके पे एक दुआ की थी, और उस दुआ का ख़ुलासा क्या था, अरबी में नहीं लिखा रही ताकि आप पे बोझल ना हो, सिर्फ ख़ुलासे पे कि इन्होंने कहा कि ए अल्लाह, जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे तो हम उनसे दुआ करवाते थे, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो हम आपसे अल्लाह के नबी के चचा के ज़रिए से दुआ कराते हैं तो आप बारिश बरसा दें। तो इस पे कहते हैं कि बारिश हो गई। अब आप गौर कीजिएगा, जिस वक्त अल्लाह के नबी के चचा की बात की गई, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तो मौजूद थी ना मदीना में, चले जाते ये कह देते अल्लाह के नबी की कब्र के हवाले से, नहीं ज़िंदगी में मौजूद थे लेकिन अब नहीं, जो ज़िंदा है उसके लिए हो सकता है, ठीक है। और ये भी जहन में रखिएगा कि ये लफ्ज़ वसीले का दो जगह कुरान पाक में ज़िक्र आया है, यानी वसीले का ज़िक्र एक तो यहाँ है और दूसरा इंशाल्लाह सूरत बनी इसराइल में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात पता चल गई, वाज़े हो गई कि ज़िंदगी ज़िंदगी में किसी के सामने ऐसी बात हो सकती है, और इस तरीके से इस काम को किया जाएगा। अब यहाँ तक भी कोई शुबा नहीं, ये दोनों बातें बहुत अच्छी हैं। पहले जो अमल है उसके अंदर इंसान अपनी नेकियों को ला सकता है, ठीक है, अपने हर अमल को कर सकता है, उसको भी हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अब तीसरी किस्म को देख लेते हैं इसी इन्हीं की तारीफ़ की रोशनी में, वो क्या है कि अल्लाह के सामने किसी को वास्ता बना कर पेश करना, गोया के अल्लाह पर कसम खाना। मसलन, ए अल्लाह मैं तुम्हें फलां का वास्ता देता हूँ, फलां के वास्ते से तुझे दुआ मांग तेरे से दुआ मांगता हूँ। मसलन जैसे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं या उनका वसीला देकर दुआ करवाते हैं, ये है वो कंट्राडिक्टरी इशू जिस पे लोग परेशान होते हैं और बाज़ दफ़ा इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि इतनी मामूली बातें जिसमें असल हकीकत को जाने बगैर कूद पड़ते हैं और एक दूसरे पे कुफर और शिर्क के फतवे लगा देते हैं। ये बड़ा रकीक मौजू है जिसमें मैं बात करने लगी हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से हक़ निकलवाए और हक़ के सिवा कुछ ना निकलवाए, और जो बात भी कहूँ वो ठीक कहूँ और जो ठीक नहीं वो मेरी ज़ुबान से निकले ही ना। देखिए कि अगर आप इस बात को कि अल्लाह के नबी के वसीले से या बुज़ुर्गों के वसीले से या इमामों के वास्ते से या फलां और फलां के वास्ते से करें, तो फिर इसकी फिर आगे दो मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। मसलन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, अब नेक लोगों से मोहब्बत इबादत है ना, अल्लाह के नबी ने खुद सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, ठीक है, उसका मफहूम यही है कि अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत चाहता हूँ और उनकी मोहब्बत चाहता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करें और उन अमलों की मोहब्बत जो तुझे पसंद है या तेरे करीब करें। तो अब इसमें देखिए कि नेक लोगों की मोहब्बत जब इस नीयत से है कि अल्लाह का कुर्ब मिले तो कोई हर्ज नहीं है। किसी नेक इंसान से मोहब्बत करना एक इंसान के ईमान का तकाजा है, क्योंकि अलमरु मा मन अहब, बंदा उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। पहले ही पारे में अल्लाह ताला ने यह हकीकत खोल दी थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाते से कि जिसने जिब्राइल से दुश्मनी की अल्लाह उनका दुश्मन है, और रिवायत कोट कराई थी कि मन आद अली वलीजन, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी का इरादा किया उसने मुझे जंग के लिए पुकारा, ठीक है। तो अब अगर इस तीसरी बात को हम इस तरह सोचते हैं कि भाई मुझे अल्लाह के नबी से प्यार है, मुझे अल्लाह तेरे नबी से बड़ा प्यार है, तू इस प्यार को अगर कबूल करता है पसंद करता है तो मेरी इस दुआ को कबूल कर ले, तो इंशाल्लाह ताला दुरुस्त है। इसमें भी आप गौर करें कि आपने अल्लाह के नबी की ज़ात को नहीं अपनी नबी सल्लम से मोहब्बत को दलील बनाया और ये आपके अमाल में से आ गया और अमाल का वसीला दिया जा सकता है। इसकी अभी आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल भी दूंगी आगे जाके, तो आप मज़ीद इसको खुल के समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह से दुआ मांगे कि अल्लाह के नबी से मेरी मोहब्बत तुझे पसंद है तो मुझे कर दे, तो ये बात मुख्तलिफ है। इसी तरह फिर सहाबा से मोहब्बत, मुहद्दिसीन से मोहब्बत, किसी नेक बंदे की नेकी की वजह से उससे अगर मोहब्बत है तो, ये नहीं कि किसी नेक बंदे की करामत की वजह से अगर उससे मोहब्बत है, वो नहीं बात होगी, ठीक है। या इंसान इस तरह बात कर सकता है कि अल्लाह तू जानता है कि मैं गुनाहगार हूँ लेकिन इस गुनाह के बावजूद मुझे तेरे नबी से बड़ी मोहब्बत है और अपनी इस मोहब्बत के अमल के ज़रिए तुझसे दुआ मांगता हूँ, तो इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये बहुत गौर से देखने की चीज़ है, और यहाँ आप लफ्ज़ वसीला के लफ्ज़ी माने को जहन में रखिएगा जो शुरू में बता दिया कि मोहब्बत के साथ कुर्ब हासिल करना। अगर लफ्ज़ मोहब्बत को निकाल देंगे ना तो कैफियत बदल जाएगी। ये चीज़ तो हो गई एक तरफ। दूसरी चीज़ क्या होती है इस रंग में जिसको सोचा जाए, मसलन ये कहना कि ये बंदा नेक है और ये इतना नेक है कि अल्लाह इसकी कभी वापस नहीं करता बात, जो ये कह देता अल्लाह मान लेता है। और ये कुछ लोग कहते थे, मुशरिकीने मक्का का ये अकीदा था कि वो अल्लाह को मानते थे लेकिन साथ साथ अपने बुज़ुर्गों को भी मानते, अपने बड़ों को भी मानते, और साथ कह देते कि देखो तुम बड़े हो, अल्लाह इतना बड़ा है, हम डायरेक्ट तो अल्लाह तक जा नहीं सकते बल्कि तुम्हारे ज़रिए से जाएंगे। और ये अकीदा उस दौर में घड़ लिया गया था, बल्कि इनके इन्हीं बड़ों ने ये अकीदे इनको सिखा दिए कि देखो पहले तुम हमें खुश करो, यानी नजराने दो, हमारी नज़र नियाजमंदियाँ करो और हमारे आगे अपने हाथ रख दो, तुम हमें खुश करो, हम अल्लाह को तुमसे खुश करवा देंगे। तो ये नज़रिया था मुशरिकीने मक्का का। अफसोस की बात है आज मुसलमानों में भी कुछ लोगों में यही ख्याल आ गया। कमाने के ढंग है, खाने पीने की बातें हैं, तुम हमारी मुट्ठी गरम करो, हम नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की मुट्ठी गरम कर देंगे। खेला मुझ तुझे फलां का वास्ता, इस सूरत में तो सरासर गलत है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसी दूसरे नज़रिए का एक दूसरा रुख भी देखिए। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि फलां बुज़ुर्ग या फलां बड़ा या इवन नबी सल्लम भी वो इतने बड़े हैं, इतने पहुँचे हुए हैं कि अल्लाह उनकी बात को कबूल करने पर मजबूर है, अल्लाह इज़ बाउंडेड, क्या वो मोड़ नहीं, कहते ना अल्लाह इन्हें मोड़ नहीं सकता। और पंजाबी में लोगों ने ऐसी बातें बनाई हुई हैं, अपनी हर ज़ुबान में होती है। यानी मैंने किसी की बात सुनी कि कोई कह रहा था कि साड़ी सुनदा नहीं तो इन्हें मोड़दा नहीं, क्या मतलब है कि अल्लाह हमारी दुआ सुनता ही नहीं है और ये बुज़ुर्गों की कभी मोड़ता ही नहीं, यानी इनको नो नहीं कह सकता अल्लाह ताला, अल्लाह ताला डोंट रिफ्यूज़ देम। या कोई कहता है साड़ी एना अगे ते एना दी रब अगे, ये बात दुरुस्त नहीं है, अल्लाह मजबूर है नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि मैं सारी दुनिया को ख़त्म कर दूँ, मुझे कोई पूछ नहीं सकता, ये उसकी ज़ात है, उसको पता है किसकी माने। तो इन दो मानों में कतन इजाज़त नहीं। सूरत ज़ुमर आयत 3 में भी अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का की इस आदत का जिक्र किया, क्या कहा करते थे, माना बुदुहुमिल्लालियुकर्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कहते थे हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। इसी तरह सूरत यूनुस की आयत 18 में आता है, व यकूलूना हा उलाई शुफाउना इंदल्ला, वो कहते हैं ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के सामने। आज मुसलमानों ने भी कुछ ऐसी ही बातें कर लीं तो ये बात दुरुस्त नहीं। अल्लाह किसी के आगे मजबूर नहीं, उसको किसी की फ़िक्र नहीं कि कोई किसी की अगर मैंने कबूल ना की तो शायद कुछ उसकी बात होगी, वो तो हम सबको दावत देता है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ, सबकी सुनता है, वो आलिम की भी सुनता है, वो जाहिल की भी सुनता है, वो रात को भी सुनता है, वो दिन को भी सुनता है, वो खलवत में भी सुनता है, वो जलवत में भी सुनता है, तन्हाई में भी सुनता है और महफिल में भी सुनता है, वो सिर्फ़ बाज़ुबानों की नहीं बेज़ुबानों की भी सुनता है। उसके लिए ये सोचना कि किसी और के साथ वो मामला रख दे या किसी की सुनता है किसी की नहीं सुनता, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इंसान को अपने ईमान का एक जायज़ा लेना चाहिए। देखिए ये इतनी मामूली बातें, एक छोटी सी बात है, हल्के से फ़र्क से जन्नत और जहन्नम की बात है, इस्लाम से कुफर की बात है या सुन्नत से बिदअत की बात है, अकीदा इतनी बारीक लाइन पैदा कर देता है कुफर और इस्लाम के बीच में कि बाज़ दफ़ा इंसान अपनी नज़र में दीन पे होता है लेकिन दूसरी तरफ वो अल्लाह की निगाहों में कुछ और बन चुका होता है। ये चीज़ बहुत सिंपल है, अगर इसको अगर समझ गए हैं तो मेरे लिए सारे मामले ही ख़त्म। एक तरफ बिल्कुल हद पे जाके इनकार कर दिया जाता है और एक तरफ बिल्कुल मोहब्बत के नाम पे इस तरह कहा जाता है, और यकीनन जो लोग ऐसा करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं, किसी की नीयत पे कोई शक नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि हर बंदा चाहे वो गलत काम करता है लेकिन वो मोहब्बत के नाम पे करता है, तो असल में इल्म नहीं है ना। जब अल्लाह की किताब खुलती है, अब ये आयत सामने ज़िंदगी में आती है, खुलती है, पता चल जाता है, इंसान अपने आप को बदल लेता है, बात ख़त्म। ना झगड़ा ना बहस, ना जन्नत किसी का आबाई घर है, ना किसी को उससे कोई रोक सकता है, ना किसी को ज़बरदस्ती उसमें दाखिल कर सकता है। तो फिर ज़रूरत है इस बात की कि जो ठीक चीज़ है उसको ले लिया जाए, जो ठीक नहीं उसको छोड़ दिया जाए, ना किसी की किसी से दुश्मनी है, کہ اس کے حصے کی جنت اس کو لینی ہے۔ اگر انسان اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے تیرے نبی سے بڑی محبت ہے اور اس محبت کے وسیلے سے اس کے توسط سے مجھے معاف کر دے، تو پھر اس محبت کا اظہار بھی دکھانا چاہیے۔ یہ مشروط بات ہے، زبان سے محبت کی بات نہیں، عمل سے پتہ چلے، اطاعت سے پتہ چلے، اتباع سے پتہ چلے کہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے محبت کرنے والوں کے دعوے ہوں، ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کے عاشق، اور عملی زندگی میں سنتیں نہیں، عمل نہیں، ایسی چیزیں جو ہیں انسان کو پھر فائدہ نہیں دیتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور بات کہ جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، جو پہلی مثال دی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ دے سکتا ہے۔ یہ بہت ہی معروف روایت ہے، صرف حوالے سے ہی سمجھ جائیں گے آپ، کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ کسی اندھیری رات میں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، اور غار کے منہ پہ ایک پتھر آ گیا، دروازہ بند ہو گیا، اب اندر پھنس کے اب کیا کریں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ چلو اپنی کسی نیکی کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اگر تو ہمارے اس عمل سے راضی ہے تو پھر ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ اور ایک ایک نیکی انہوں نے یاد کی، ایک نے ماں باپ سے حسن سلوک کی بات کی، ایک نے اپنے امپلائی کے ساتھ فیئر ہونے سے کی بات کی، اور تیسرے نے اپنے نفس پہ قابو کی بات کی کہ اپنی کسی چچا سا بہن سے اس کا معاملہ تھا لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور ان تینوں نے اپنی بات کا ذکر کیا، اور آہستہ آہستہ غار سے پتھر ہٹتا گیا اور ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ہی طویل روایت ہے، تو اس سے دلیل مل جاتی ہے کہ انسان اپنا عمل پیش کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں جب بھی آتی ہوں تو میں ایک لمحے کے لیے ضرور سوچتی ہوں، کیا میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے جس کو خالص اللہ کے لیے پیش کروں؟ دیکھیے، نیکیاں ہم دن رات کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، چھوٹی بڑی، کچھ عادتاً کرتے ہیں، کچھ دوسروں کو دیکھتے ہوئے رغبت سے کرتے ہیں، لیکن کوئی تھوڑی سی نیکیاں ریزرو میں ضرور رکھنی چاہیے۔ کوئی ایسی نیکی ضرور کروں گی جو خالص اللہ کے لیے، چھپا کے، کونے میں بچ کے، وہ آپ کے اندر کے دل کا کوئی جذبہ بھی ہو سکتا ہے، کسی دشمن کو معاف کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کسی سے بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا مال معاف کرنا بھی ہو سکتا ہے جس نے آپ کا مال دینا تھا، وہ کسی کی بے عزتی کرنے کے جذبات سے بھرپور ہونے کے باوجود اللہ کے لیے چپ کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی مسجد سے ایک ٹیشو پیپر اٹھانا بھی ہو سکتا ہے، وہ رات کی تنہائیوں میں کہیں جا کے ویکیوم کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے میں بھی اور آپ بھی نیت کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے بہت ساری نیکیاں کی ہی ہوں گی ایسی، لیکن آج اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اس بات کو سنتے ہوئے عمل کی نیت کرتے ہیں، اور کوئی ایک نیکی ایسی کریں گے چپکے سے، پھر کوئی ظاہر کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے، کیونکہ یہ تو خفیہ نیکی ہے، تو اس کی اجازت ہے، اور یہی چیز پھر بندے کو رب کی نگاہوں میں اٹھاتی ہے۔ اور اس کی ایک اور دلیل بھی آپ کو دوں گی، سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، جس کو تہجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، وہ دعا آپ نے یاد کی تھی نا، کہ وہ کیا دعائیں کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں، کہ بے شک اے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو جو پکارتا تھا ایمان کی طرف۔ یعنی ایک بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، کہ جو ہمیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں اللہ سے ملانے کی دعوت دیتا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اس کی بات کو سن کے مان رہے ہیں۔ کتنے خوشبخت لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کیا ان آمنوا بربکم، ایمان لے آؤ اپنے رب پر، مان جاؤ اس کو۔ ہم نے کیا کیا، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ پھر ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ ہم نے مان لی بات، ہم مان گئے، سرنڈر کر دیا، لہٰذا اب آپ کیا کریں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری کوتاہیوں کو دور کر دے، ہماری مسٹیکس کو دور کر دے، خطاؤں کو دور کر دے، اور وہ توفنا مال ابرار، اور ہمیں ابرار کے ساتھ مارنا नेक लोगों के साथ मौत आए, और ये कब होगा जब ज़िंदगी नेक लोगों के साथ होगी। फिर आगे भी दुआ है उनकी, रब्बना वातिना, लेकिन इसमें ये जो लफ्ज़ है ना, फ़आमन्ना, इसको हाईलाइट कर ले। ये है वसीला, अपने ईमान का वसीला पेश किया कि अल्लाह ताला हम ईमान ले आए हैं, अब तो हमसे राज़ी हो जा। तो इससे भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है। और ये ऐसे ही जैसे कोई आपको अपना कोई अच्छा अमल याद कराए, तो वाकई अगर आपके दिल में किसी के लिए कभी यानी गुस्सा आता है, घर में रहते हुए बहन भाइयों में अक्सर ऐसे मामला हो जाते हैं, तो एकदम कोई आपको याद कराता है, देखो मैंने फ़लां वक्त पे तुम्हारी मदद की थी ना, तो आप कहते हैं हाँ, तो फ़ौरन आप कूल डाउन होते हैं कि चलो कोई बात नहीं ना, अगर इसने मुझे नुकसान दिया या मुझे इसने कोई गलत बात कह दी है, तो इसने मुझे वो फ़ायदा भी तो दिया था, तो आप फ़ौरन ठंडे होते हैं। ये बिल्कुल यही इसकी इस वक्त यानी बेस भी यही है कि अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ ये जहन में रखिएगा कि ये कोई एहसान जताने वाला अंदाज़ ना हो, रोब डालने वाला नहीं, देखो अल्लाह ताला ने ये किया वो किया वो किया, अब तू दे दे। ये तो मोहब्बत के साथ दें, ये नरमी से करने वाली बातें हैं। इसी तरह सुन्नत से कुछ और चीज़ों का वसीला भी मिलता है, वो क्या? अल्लाह ताला के नामों का वसीला, सिफाते इलाही का वसीला, यानी अल्लाह का कुर्ब अल्लाह के नामों के ज़रिए। इसकी क्या दलील है? एक दुआ जो हम सब सुबह शाम 3 दफ़ा पढ़ते हैं, और अगर नहीं पढ़ते तो पढ़नी चाहिए। सल्लम ने फरमाया कि सुबह शाम 3 मरतबा जिसने ये दुआ पढ़ी, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रि मा खलक, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ उसके कलेमात के ज़रिए, हर उस मखलूक के शर से जो उसने पैदा की। तो कहा कि फिर अल्लाह ताला उसको शर से बचा लेगा। तो इसमें आप देखिए बी कलीमात, इस लफ्ज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप अल्लाह के कलेमात का वसीला दे रहे हैं। इसी तरह सूरत अल आराफ़ में भी आती है एक आयत, वलिल्लाहिलस्माउलहुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के खूबसूरत नाम है उनके ज़रिए पुकारो। प्रैक्टिकल क्या फॉर्म होगी इसकी? बस आप कह सकते हैं या रहमान, या रहीम, या मालिक, या गफ्फार, या कुद्दूस, इग़फिरली, मुझे माफ़ कर दे, या आप कह सकते या रहमुर्राहिमीन, ए रहम करने वाले, तेरी रहमत का वास्ता, ए अल्लाह तेरे बख्शने का वास्ता, ए अल्लाह तेरे माफ़ करने का वास्ता। तो ये कह सकते हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के तमाम नाम और उसकी सिफात को। इसी तरह एक चीज़ जिसकी वसीले के नाते से जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है, और वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, उसका ख़ुलासा आपके सामने रखूँगी। आपने फरमाया कि जब तुम अजान सुनो, जब तुम मुअज्ज़िन की आवाज़ सुनो, अजान सुनो, तो फिर क्या कहो? जो उसने कहा तुम भी उसके पीछे वही कहो, यानी सेम वही कहो। और जहाँ आपको पता है कि हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल्फलाह आता है, वहाँ भी यही कहो। और उसके बाद मुझ पे दरूद भेजो, और उसके बाद फिर तुम ये दुआ पढ़ो। किताबुल आज़ान में है, और सही मुस्लिम में ये रिवायत किताबुल सलात में है। अल्लाह के नबी सल्लम के आलमोस्ट वही लफ्ज़ से मिलते जुलते जिसका ज़िक्र किया कि तुम ये करो और मेरे लिए ये दुआ करो, क्या? यानी दरूद पढ़ो और उसके बाद मेरे लिए वसीला मांगो, वो मेरी शिफात का मुस्तहिक होगा। और दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत तामा वस्सलातिल क़ाइमा आती मोहम्मद अल वसीलत वल फदीला वब असहु मकाम महमूद अल्लज़ी व अत्तहु। ए अल्लाह, तू रब है इस पुकार का, यानी ये जो पुकार हुई अजान है तो इसका भी रग है, रब है, और जो नमाज कायम होगी उसका भी। तू नबी सल्लम को दे वसीला और फजीला, और उनको मकामे महमूद पर मबूस कर दे जिसका तूने उनसे वादा किया है। तो यहाँ लफ्ज़ नोट कीजिएगा, आती मोहम्मद अल वसीला, अल्लाह के नबी को वसीला दे। तो पूछा गया कि वसीला क्या है, तो आपने फरमाया ये जन्नत का आला मुकाम है, और मैं गुमान करता हूँ कि वो एक ही बंदे को मिलेगा और वह मैं होऊंगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये कहा है आती दे नबी को मोहम्मद को वसीला, ये तो नहीं कहा कि वज अल हु वसीला, जो लोग अल्लाह के नबी को एज अ पर्सन या आपकी ज़ात को वसीला बनाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दलील है। हालांकि बाद लोग इसी दुआ का ही जिक्र करते हैं कि देखें आपने तो ख़ुद कहा वसीला मांगो, तो ये तो कहा कि उनके लिए वसीला मांगो, ये नहीं कि उन्हीं को वसीला बना दो। बहुत फ़र्क पड़ जाता है ना इस बात से। अल्लाह ताला हमें ऐसे काम करने की तौफीक दे कि जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला के नबी सल्लम का कुर्ब पा सकें। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में भी आता है कि सुन्नतों पर अमल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, और ये बात तो आप पीछे भी पढ़ चुके कि जिसने अल्लाह की मोहब्बत चाहनी है वो अल्लाह के नबी की इताअत करे। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो अल्लाह के रसूल की इताअत करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा, और यही हम भी चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। क्या मिलेगा? लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम फलाह पा जाओगे। यानी कुर्ब पाकर जिहाद और तकवा के ज़रिए तुम कामयाब होगे। तुफ्लिहून का लफ्ज़ जो है इसमें दो चीज़ें होती हैं, सिर्फ कामयाबी नहीं है, नुकसान से बचना भी है। ये ड्यूल प्रोसेस होता है। पहला इसका दर्जा क्या होता है? हसूलुल मतलूब, मतलूब चीज़ को पा लेना, हासिल कर लेना मतलूब चीज़ को। जो आपकी डिमांड थी ना, जो डिज़ायर थी, उसको आपने पा लिया, ये पहला दर्जा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ मिलती तो है लेकिन बड़े मुश्किल मरहलात में। मिसाल दूंगी, अगर एक औरत है उसको बच्चे की ख्वाहिश है, बच्चा उसको मिल तो जाता है लेकिन बहुत तकलीफ़ों से, बहुत तकलीफ़ होती है, और बाद दफ़ा माँ की जान भी चली जाती है या बीमार हो जाती है, या खुदा न खास्ता बच्चे में कोई नक्स होता है। मिल तो गया बच्चा लेकिन पूरा नहीं मिला, तो ये फलाह नहीं है। फलाह क्या होती है? हसूलुल मतलूब, मतलूब चीज़ को हासिल कर लेना और नुकसान से बचना, नुकसान से बचते हुए चीज़ को हासिल करना। ये दो चीज़ें मिलती हैं तो लफ्ज़ फलाह बनता है। अल्लाह ने किस चीज़ को फलाह कहा, यहाँ ये भी देख लें। अल्लाह के कुर्ब को, जिसने रब को पा लिया वो फलाह पा गया। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा, और कौन कामयाब हुआ? जिसने अपने नफ्स का तस्किया कर लिया और अपने आप को सुला दिया, यानी अपनी अना को सुला दिया। कद अफलह मन ज़क्काहा, सूरह ग़ाशिया है या लैल है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। हम क्या समझते हैं कामयाबी? ख्वाहिशात का पूरा होना। हालांकि अब देखिए, ख्वाहिशात की तो कोई हद ही नहीं है, एक पूरी करेंगे तो दूसरी पे निकल जाएंगे। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ जो है वो फलाह नहीं है। एक पूरी तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं किसी एक आयत पे अमल करने की तौफीक भी दे, और वाकई हमें अपना कुर्ब दे दे। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। हम भी तो अपनी ज़िंदगी में उस कुर्ब को पाएं जो रातों को जगाने के लिए इंसान को तैयार करता है। फिर गारे हिरा में सारी सारी रात का बैठना छुपता नहीं है। ये कब होता है? जब मोहब्बत आती है। अब देखिए, जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी तो फिर उसका दिल भी चाहेगा ना अल्लाह से बातें करने को। फिर नमाज में दिल लगेगा, फिर कुरान में दिल लगेगा, फिर वो उसकी सारी चीज़ों को साथ लेके चलेगा, तो इंशाल्लाह उसको उससे अल्लाह ताला की मज़ीद मोहब्बत नसीब होगी। अब साथ ही इसके ऑपोज़िट बात कह दी कि इन्नल्लज़ीना कफरू, मगर वो लोग जो कुफ़र करें उनका हाल क्या? लवन लहुम्मा फिल अर्दी जमीयन, उनके लिए वो सब कुछ जो ज़मीन में है, जमीयन सारे का सारा, सब कुछ जो है वो देना चाहेंगे क़यामत के दिन, बल्कि उससे भी दुगना, ताकि क़यामत के दिन के अज़ाब के बदले फ़दिये में छुट जाएं। मा तुक़ब्बिला मिन्हुम, कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों दे रहे हो? हमें नहीं चाहिए तुमसे, हमने तो एक वक्त था तुमसे सिर्फ़ 100 में से 250 मांगे थे, आउट ऑफ 100 2.5% मांगा था। उस वक़्त तो तुमने नहीं दिया, तुम्हारे 24 घंटों में से 1-2 घंटे ही तो मांगे थे इबादत के लिए, उस वक़्त तुमने नहीं दिए। तुम्हारे बच्चों को पूरा ही तो नहीं मांगा था, उनका कुछ वक्त, उनका कुछ मकसद ऐसा कि जिससे अल्लाह ताला के दीन को फ़ायदा हो जाए, यही तो मांगा था ना। तो जब तुमने ये नहीं दिया तो आज जो मर्जी दे दो। दुरुस्त नहीं। आज माफिल अर्दी जमीन, सब जमीन का, देखिए जमीन का सब कहा है, आसमान का नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि आसमान की चीजें इंसान के हाथ में नहीं है, वरना तो शायद आसमानों पे भी जंगें लगी होती। जमीन के सारे खजाने ले आओ, सारा सोना ले आओ जो पहाड़ों की गोद में है, चांदी ले आओ, सारा पेट्रोल ले आओ, गैस के जखायर ले आओ, मशरिक मगरिब शमाल जनूब फिर जाओ, सब कुछ ले आओ, लेकिन फरमाया कबूल नहीं होगा। इंसान उस दिन देना चाहेगा ना? एक सही रिवायत में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत भी है, सिफतुल क़यामा बाब है, और सही बुखारी में किताबुर रिक़ाक़ वल अम्बिया में है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक जहन्नमी को जहन्नम से निकाल कर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, तूने अपनी आरामगाह कैसी पाई, कैसा है तेरा ठिकाना? वो कहेगा, बदतरीन आरामगाह, यानी बहुत ही बुरा स्टेइंग प्लेस। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू ज़मीन भर सोना देकर इससे छुटकारा हासिल करना पसंद करेगा? वो हाँ में सर हिलाएगा कि जी ऐसा करूँगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने तो दुनिया में इससे भी बहुत कम का मुतालबा किया था, तूने वहाँ उसकी परवाह नहीं की, और इसे दोबारा जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। और आपको बताया कि वहाँ इंसान क्या कुछ फ़िदिये में देना चाहेगा, वो चीज़ें जो दुनिया में इंसान की मनपसंद होती हैं। महफिल अर्द में सिर्फ बेजान चीज़ें नहीं आती, जानदार चीज़ें, रिश्ते, मोहब्बतें, अपने प्यारे, ये सब जो अल्लाह के दीन से या उसको कबूल करने से रोकते हैं, इसको लोग पेश करेंगे। आप कहेंगे, इतनी बड़ी बात? जी, ये कुरान पाक ही से मैंने आपके सामने रखी, सूरत अल मारिज की आयत नंबर 11 से लेके 18, 11 to 18 में आता है। युबस्सिरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी। वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे, यानी एक दूसरे को सब देखेंगे मैदाने महशर में, कौन कहाँ पकड़ा हुआ है। और उस दिन मुजरिम चाहेगा कि काश फिदिये में दे दे उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों को, बनी बेटे को, बल्कि बनीन है ना, बनी बेटों को जमा है, कि सब बेटों को वो दे दे, वह साहिबती ही व अखी, और अपनी बीवी को और अपने भाई को, वह फसीलती हिलती तुवी, और अपने उस कुंबे को जो उसको जगा देता था, उसकी बैक था, वो उसको सपोर्ट करता था, वह मन फिल अर्दी जमीयन, और जो सब कुछ है ज़मीन में, सुम्मयुन जी, फिर उनको निजात मिल जाए। छोड़ दे, मुझे छोड़ दो, इन सबको ले लो, क्या कहा जाएगा? कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा लज़ा, ये तो शोलों वाली आग है, नज़ात लिश्शवा, जो चेहरे की खाल को झुलस देती है, तदउ मन अदबरा व तवल्ला, जो पुकारती है हर एक उसको जिसने पुश्त फेरी और मुंह मोड़ के चला गया, व जमा फ़ाउआ, और जमा किया और गिन गिन के रखता रहा। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे हशर से बचाए। हाल क्या होगा इनका जहन्नुम में? युरीदून आई आई यखरुजू मिनन्नार, चाहेंगे इस आग से निकल जाएं, बचें, वमा हुम बिखारिजीन मिन्हा, नहीं निकल सकेंगे। जहन्नुम के चौकीदार इतने गाफिल नहीं है कि जो चाहे वहाँ से निकल के भाग जाए। ये ऐसी जेल नहीं है कि जहाँ से कोई रस्सियाँ तोड़ा के निकल जाए, वहाँ से नहीं निकलेंगे। वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मैं इस आयत को जब पढ़ती हूँ ना, तो मेरे जहन में एक मंज़र बनता है, और वो क्या है कि जब आप पानी को उबालते हैं, कभी शायद आपने पतीले में पानी उबाला हो, बाद लोग बच्चों के फीडर्स या उनके ढक्कन उबालते हैं, तो आप देखते हैं कि जो ही पानी को जोश आता है ना, तो वो ढक्कन या कोई ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना हल्के वज़न की, वो सब ऊपर आ जाती हैं, तैरने लगती हैं ऊपर ही ऊपर, और ज़रा पानी ज़्यादा हो तो वो फिर बाहर गिरती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जहन्नुम जोश खा रही है, और ये लोग उसके अंदर से निकल निकल के बाहर मारे जा रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं, और फरिश्ते उनको वापस अंदर लेके जा रहे हैं। तुम कहाँ चले गए? कैदी हो, कैद से निकल के भाग रहे थे, छुटना चाहते थे। اللہ اکبر، اسی کا ذکر سورت المومنون کی آیت 107 اور 108 میں بھی ہے، 107 اور 108، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو ہم بہت ظالم ہوں گے، کہ دنیا میں جانے کے بعد اگر وہی کام کیے تو ہمیں پھر لے آنا، ہم ظالم ہیں، کیا جواب ملے گا؟ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، دھتکارے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے کلام نہ کرو. اخسا کہتے ہیں کتے کو دھتکارنا، کبھی کتا پیچھے پڑتا ہے نا تو لوگ اس کو پتھر اٹھا کے پھینکتے ہیں، ہت دھت دھت پیچھے بھاگو اور مجھ سے کلام نہ کرو. تو کلیمون، نون کے نیچے زیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے، مجھے نہ پکارو، میرے سے کلام نہ کرو. کیوں بھائی؟ انہو کان فریق من عبادی، بے شک وہ ایک گروہ تھا میرے بندوں کا، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ رب ہمارے ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. تم نے کیا کیا؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی، یعنی ان کے مذاق اڑانے میں تم مجھے ہی بھول گئے. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنستے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے حشر سے بچا کے رکھے اور اس دن کی حسرتوں سے بچائے، اور ایسے لوگ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ذریعے سے ہی دین کی دعوت دلوا سکے تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ اسی طرح سورت حج کی آیت نمبر 22 میں بھی ایک آیت آتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. سورت حج آیت نمبر 22، کلما ارادو ان یخرجو منہا من غم اعیدو فیہا وذوقوا العذاب الحریق، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں، یعنی اس غم سے، تو اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو. اور اس سے اوپر جہنم کی اتنی زبردست آیتیں تھی. دیکھیے، جہنم ایک حقیقت ہے، یہ کھیل نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ آگ ہے، نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، کتنی بڑی ہوگی، کتنی شدید ہوگی، کہ جس کے لیے سورت حج کی اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، ہذان حسمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جو رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں. فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں، یعنی کاٹ دیے ہیں، بس اب سلنے کی دیر ہے، اور اللہ کے لیے تو وہ بھی نہیں. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. پانی کیا کرے گا؟ یسخر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ گلا کے رکھ دے گا جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور ان کی کھالوں کو، یعنی سر کے راستے سوراخ کر کے پانی ڈالیں گے اور وہ انتڑیاں، انٹسٹائن کے راستے، گندگی کے راستے جسم سے گھل کے نکل جائیں گے اور ان کی کھالیں گل جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيد، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانیت کو اس برے انجام سے بچا. وہ کوئی بھی ہو، وہ ہم ہوں یا کوئی اور ہو، اے اللہ تو کسی کو دور سے بھی جہنم کے قریب نہ کروانا، اور جن لوگوں کے دل میں ہلکی سی خیر بھی ہے ان کو اس دین کی طرف لے آ.